जाती भई अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी के आचार्य कुंद स्वामी के आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए विचारों की दृढ़ता और स्थिरता पर विचार कर रहे हैं। जीवन में हम सुबह से शाम तक मन वाणी और शरीर से कोई ना कोई कर्म करते ही रहते हैं और उन कर्मों के परिणाम स्वरूप हमारे भीतर एक संस्कार निर्मित होता रहता है और फिर उस संस्कार से प्रेरित होकर हम पुनः कर्म करते हैं और एक विशेष सर्कल और यह निरंतर चलने वाला चक्र हमारे जीवन में सुख दुख दोनों के लिए आमंत्रित करता है। हम ऐसा क्या करें जिससे कि सदा के लिए हम दुख से निवृत्त हो जाएं? सबके मन में इस संसार में रहते हुए एक ही कामना होती है कि वह दुख से मुक्त हो सके। दुख से मुक्त होना यानी संसार से ही मुक्त होना, लेकिन उसके लिए हमें अपने कर्मों को व्यवस्थित करना पड़ेगा। जो कर्म हम करते हैं मन से वाणी से और शरीर से, वे हमारे साथ संस्कार की तरह जुड़ते हैं और फिर उनका फल हमें भोगना पड़ता है। कर्म किस तरह से करें और कर्म का फल भोगते समय क्या सावधानी रखें, ये एक छोटी सी टेक्निक सीख लेनी चाहिए। कर्म करते समय सावधानी उतनी नहीं रह पाती, लेकिन कर्म का फल भोगते समय तो हम सावधानी रख सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर वीतराग भाव से कर्म करे, जिसको हम निष्काम कर्म कहते हैं, तब तो वह कर्मों के बंधन से आसानी से मुक्त हो सकता है। लेकिन हमारी आदत है कि हम कर्ता बन के कर्म करते हैं, कर्तापने का अहंकार हमारे भीतर से ज्यादा नहीं है और उसके परिणाम स्वरूप जब वे अपना फल देते हैं तो कर्म अपना फल तो शुभ और अशुभ दोनों रूपों में देते हैं, और जब वे कर्म अपना फल शुभ रूप में देते हैं तब मैं अहंकार कर लेता हूं कि देखा मैंने जो कर्म किया था उसका मुझे कितना बढ़िया प्रतिफल मिला, और उस अहंकार के चलते फिर एक नया कर्म मेरे साथ जुड़ जाता है। या फिर उस कर्म जो मैंने किया उसके फलस्वरूप मुझे असफलता मिलती है, मेरे जीवन में दुख आता है, तब मैं निराश हो जाता हूं, संक्लेश कर बैठता हूं, और वह जो संक्लेश है वह जो निराशा है वो फिर मेरे भीतर एक नया कर्म आमंत्रित कर देती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। बचने के उपाय पर विचार हमने कल किया था कि हम जो भी प्रवृत्ति करें उसमें सावधानी रखें। सुबह से शाम तक जो भी मन वचन काय की चेष्टाएं हमारी होती हैं वे अगर पूरी सावधानी के साथ की जाएं, वे पूरे ज्ञान और वैराग्य के साथ की जाएं, तब फिर जो कर्म हम करेंगे वे हमारे लिए नए कर्म अर्जित करने में कारण नहीं बनेगा, वो कर्म तो हमें पुराने कर्मों को हटाने में कारण बनेगा। जब हम अपनी मन वचन काय की जो सामर्थ्य हमें मिली है, सबको नहीं मिलती भैया मन वाणी और शरीर की सामर्थ्य, बहुत सारे क्षुद्र जीव हैं जिनको मन की सामर्थ्य नहीं मिली, जिनको वाणी से अपने विचारों को व्यक्त करने की सामर्थ्य नहीं मिली, मात्र शरीर के स्तर पर जीने वाले बहुत लोग हैं। हम तो शरीर मन और वाणी तीनों को प्राप्त करने वाले हैं, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है कि हम तीनों का सदुपयोग करें। हम अपनी अनर्जी को इन तीनों के माध्यम से चाहे तो वेस्ट कर सकते हैं और चाहे तो हम इसको रीस्टोर कर सकते हैं। हमें अपने मन वाणी और शरीर को व्यर्थ नहीं गंवाते हुए उस एनर्जी को स्टोर कर लेना चाहिए और वो जो स्टोर हुई एनर्जी है वो हमारे भीतर पड़ी हुई अपवित्रताओं और मलिनताओं को हटाने में काम आती है। ठीक ऐसे ही जैसे कि पानी को नियंत्रित रूप से अगर प्रवाहित किया जाए और उसके ऊपर डैम बना करके फिर इलेक्ट्रिक बनाई जाती है, वो क्या प्रक्रिया है, वो क्या इंजीनियरिंग है, वो क्या टेक्निक है, वो टेक्निक बहुत बाहरी है, ऐसी तो हम अपने भीतर भी कर सकते हैं। हम भी अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं और चैनलाइज करके उसे एक निश्चित प्रवाह में उसे आगे बढ़ा सकते हैं। अपने इंद्रिय और मन को हम एक निश्चित दिशा में ले जा करके और उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं और उससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा के द्वारा हम इंद्रिय और मन की ग्रिप से बाहर भी निकल सकते हैं। ये प्रक्रिया सीख लेने की, अब जिसको जब समझ में आ जावे, बहुत सीधी सी चीज है, कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है, लेकिन अभ्यास नहीं होने की वजह से कठिन मालूम पड़ता है। जिन चीजों का अभ्यास है अभी करवा लो गुस्सा, फट से कर लेंगे अपन। नहीं कितना अभ्यास है, अपन को जरा सी एक कड़ी कोई बात कह दे वे अब भी आ जाएगा, लेकिन क्षमा भाव धारण करने में तो बहुत वर्षों लग जाएंगे, बहुत दिन तक याद में बना रहेगा कि उसने मेरे से कड़ी बात कही थी। तो अभ्यास हमें अच्छाइयों का भी करना पड़ेगा, अभ्यास हमें इस बात का भी करना पड़ेगा कि कैसे मैं इन बुराइयों से बचूं। जब तक मैं अपने भीतर आने वाली बुराइयों का द्वार बंद नहीं करूंगा, तब तक मैं अपने भीतर पड़ी हुई बुराइयों को कैसे हटाऊंगा। बहुत सीधी सी प्रक्रिया है, मैं एक तरफ अपने अंदर आने वाले मन वाणी और शरीर से जो अपवित्रताएं हैं उनको रोकूं, तो इस अपवित्रता को रोकने से मेरे भीतर पड़ी हुई जो अपवित्रता है वो कमजोर पड़ने लगेगी। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी हो और वो अपने क्रोध को कम कर ले धीरे धीरे, तो उसके भीतर जो क्रोध का संस्कार पड़ा हुआ है वो भी ढीला पड़ने लगेगा और उसका जो एक बाहर छवि बन गई थी कि ये व्यक्ति बड़ा गुस्सैल आदमी है, वो छवि भी धीरे धीरे मिटने लगेगी कि नहीं नहीं भाई, पहले जरूर गुस्सा करता था, अब तो बहुत शांत हो गया है, अब तो बहुत क्षमावान हो गया है, अपने आप मिटना शुरू हो गया। एक काम करने से कितने सारे काम शुरू हो गए। यही प्रक्रिया हमें अपने मन वाणी और शरीर के बारे में लागू करनी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण जिससे समझ में आ जाए, आचार्य महाराज हमेशा हमारे दिया करते हैं। हम लोगों के ये सारे जितने भी अपने जीवन को अच्छा बनाने के प्रयत्न हैं वो सफल क्यों नहीं होते हैं? उसका कारण क्या है? कारण बहुत स्पष्ट है कि जो बुराइयां हैं वे मेरे भीतर आती रहती हैं और अच्छाइयां तो थोड़ी आती हैं, बुराइयां अधिक आती हैं, उनका रेशियो ज्यादा होता है, मेरा प्रयत्न व्यर्थ चला जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति नाव में बैठा हो और उसके छेद में से पानी आ रहा हो और वो एक डिब्बा लेकर के उस पानी को निकाल भी रहा हो, लेकिन आने का मार्ग बहुत तेजी से आ रहा है और निकालने की स्पीड तो बहुत कम है, तो क्या स्थिति बनेगी? नाव डूब जाएगी। वही हम लोगों के साथ में भी, इसको कहते हैं गज स्नान के समान स्नान करना। गज स्नान के मायने क्या होता? हाथी को ले जाओ नदी के किनारे, बढ़िया से सूंड से पानी भर भर के अपने ऊपर डाल लेगा और बिल्कुल ऐसे लगेगा साफ सुथरा हो गया, और वापस लौटा के लाओ तो फिर बाद में ढेर सारी धूल भी डाल लेगा, कीचड़ कीचड़ हो जाए, आदत रहती है। ऐसे ही अपन लोग के साथ में घंटे भर मंदिर में पूजा पाठ करेंगे, गुरुजनों की सेवा करेंगे, तो थोड़ा सा पानी डाल लिया और फिर बाद में निकले बाहर तो फिर वही मलिनताएं हैं। 23 घंटे मलिनताओं से लिप्त होते हैं, घंटे भर साफ सफाई में लग जाता तब तक साफ सफाई होती, उसके पहले ही फिर और मलिन हो जाते। ये प्रक्रिया जो कंटिन्यू चलती है उसकी वजह से हम अपने जीवन को पूरी तरह अच्छा नहीं बना पाते। बुराइयों को रोकना और फिर अच्छे बनने की प्रक्रिया शुरू करना, ये दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए। वो उदाहरण बहुत सीधा सा है कि एक राजा साहब के मन में था कि बाबा जी मुझे बताएं कि जब मैं अच्छा काम कर रहा हूं, दिन भर में मैं बहुत सारे अच्छे काम करता हूं और एक आध कोई बुरा काम कर लेता हूं तो ऐसा क्या उसमें। हाँ, उनके मन में ये था, मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए, एक आध बुरा कर लिया तो उतना तो चलेगा, वो बैलेंस हो जाएगा उसमें। लेकिन ऐसा बैलेंस होता नहीं है, लगता जरूर है। अब बाबा जी इस चीज को कैसे समझाएं? कई बार उन्होंने कोशिश भी करी समझाने की, राजन भीतर मलिनताएं रही आवे और हम कितने भी अच्छा काम कर लेवे तो वो हमारे जीवन को उतना अच्छा नहीं बना पाता है, हमें मलिनताओं को हटाने का भी उपक्रम करना चाहिए। नहीं, हम मलिनताएं तो ज्यों की त्यों रखने देंगे और आप हमसे पूजा पाठ चाहे जो करवा लो तो कैसे काम बनेगा, अपन कर तो वो ही रहे हैं। नहीं, दुकान पर तो हम उतना ही बेईमानी करेंगे, पूजा आप 2 घंटे करवा लो, क्या फर्क पड़ने वाला। दान हम आप जितना चाहो उतना, लेकिन बेईमानी तो हम नहीं छोड़ेंगे, तो फिर तो दोनों काम नहीं चलेंगे। और कर अपन यही रहे हैं, एक तरफ संसार भी ना छूटे और दूसरी तरफ मुक्ति भी मिल जाए, एक तरफ मैं अपने अशांति के उपाय अपनाता रहूं और दूसरी तरफ महाराज के चरणों में शांति के लिए विनय करता रहूं कि शांति मिल जाए, और अशांति के उपाय खुद करें और आकांक्षा शांति की है, संभव नहीं होगा। अब कैसे समझाएं? तो एक दिन बाबा जी पहुंच गए सुबह सुबह भिक्षा के लिए राजा के दरबार में। तो राजा ने कहा, वाह, आज तो आप हमारे यहां भिक्षा के लिए पधारे, हमारा सौभाग्य, लाओ भाई भिक्षा लाओ, भिक्षा के लिए बढ़िया बढ़िया मिठाइयां, आप राजा के यहां गए तो मिठाइयां मिलेंगी। तो उनने कहा, लाओ कटोरा कहां है। तो फौरन बाबा जी ने कटोरा सामने कर दिया। अब देखा तो कटोरे में तो ढेर सारा कचरा भरा हुआ था। राजा ने कहा कि भगवान, इस कटोरे में मेरी दी हुई मिठाइयां वो तो नष्टी हो जाएंगी, खराबी हो जाएंगी, आप जरा इस कटोरे के कचरे को फेंक के आए, साफ सुथरा बना के आए, फिर उसके बाद में मैं आपको इसमें बढ़िया बढ़िया मिठाइयां दूंगा तो आपको खाने में भी मजा आएगा। अब बाबा जी तो राजा को समझाने आए थे और राजा से समझने लगे हैं, राजा समझा रहे उनको, हर नहीं समझने वाला दूसरे को समझाता है, जबकि वो खुद समझ ले तो पर्याप्त है मेरे ख्याल से। राजा साहब समझा रहे हैं कि बाबा जी वो इसमें गंदगी में कैसे आप मिठाइयां लेंगे, जरा साफ करके आइएगा। बाबा जी जोर से हंसे और उन्होंने कहा कि मुझे तो ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैं तो अभी इस कचरे को फेंक करके साफ सुथरा बना करके बर्तन ला सकता हूं, तुम अपने भीतर की जो गंदगी है उसको कब हटाओगे और मेरी ये अच्छी बात तुम्हारे भीतर कब आएगी, मैं यही तो हमेशा से कह रहा हूं। तो मेरे जीवन में अच्छी बात तो मेरे से चाहते हो लेकिन अपने भीतर की ये गंदगी पहले नहीं हटाते और मेरी अच्छी बात तुम्हारी उसी गंदगी में मिलकर के वो और व्यर्थ चली जाएगी, जैसे कि तुम्हारी मिठाई मेरे इस कटोरे में गंदगी भरी हुई है उसके साथ व्यर्थ ही हो जाएगी। हम लोगों के साथ भी यही है, भीतर की अपवित्रताओं को हटाने का प्रयत्न भी करना चाहिए। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार प्रबल पंच इंद्री विजय धार निर्जरा सार, निरंतर मेरे भीतर मेरी अज्ञानता और आसक्ति से जो कर्म अपवित्र संचित हो गए हैं उनके लिए मैं निकालने का प्रयत्न कैसे करूं। मैंने नए कर्मों को आना तो रोक लिया है लेकिन भीतर पड़े हुए कर्मों को कैसे वॉश आउट करूं, कैसे उनको धोऊं, ये प्रक्रिया तो करनी ही पड़ेगी। और उस प्रक्रिया को करने के लिए एक ही उपाय है, तपसा निर्जराचा, तपस्या के द्वारा हम चाहें तो अपने भीतर की गंदगी को हटा सकते हैं। जैसे कि किसी बर्तन में कोई खराब चीज लग जाती है, उसे पवित्र करने के लिए क्या कहते हैं भैया, अग्नि में उसको गर्म करो, फिर मांझ करके साफ करो। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर की मलिनताएं तपस्या से ही नष्ट होंगे। ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ हमारे आने वाली बुराइयों को रोकती है, और ज्ञान और वैराग्य के साथ की गई तपस्या हमारे भीतर संचित मलिनताओं को हटाती है। ये बात सीधी सीधी सी प्रक्रिया, लेकिन तपस्या का नाम सुनते ही हाथ पैर में घबराहट मन में और हाथ पैर में कपकपी आने लगे। तपस्या वो अपने से नहीं होती, लेकिन तपस्या के मायने समझ लेवे तो फिर कठिन नहीं लगेगी। अभी तक तो तपस्या के मायने यही समझ रखा है कि बाहर जाकर के धूप में बैठ जाओ, जितने तपोगे उतने ही बढ़िया कर्म झर जाएंगे। बाद में भले ही वहां घंटे भर धूप में बैठ करके फिर बाद में बढ़िया से कोल्ड ड्रिंक पी लेना और एसी में बैठ जाना, इसी का नाम तपस्या मान लिया अपन ने। घंटे भर तो एक तरफ हम अग्नि जला करके सिर पर और धूप में बैठे रहे, और उसके बाद में अपने जीवन को मलिन बनाने वाली सारी आसक्तियां फिर घेर लें अपन को, तो ये तपस्या करने का ढंग नहीं है। इसलिए ये तपस्या जरा कठिन मालूम पड़ती। तपस्या के मायने क्या है? इच्छा निरोधा तपः, अपनी इच्छाओं का निरोध कर देने का नाम तप है। अपने भीतर उठने वाली जो अपने अकल्याण करने वाली इच्छाएं हैं, जो सांसारिक इच्छाएं हैं, उनको रोक लेना, ये तप हम चाहे तो आसानी से अंगीकार कर सकते हैं। इच्छाओं को आज तक कोई पूरा नहीं कर सका, इच्छाएं दुष्पूर हैं। ठीक ऐसे ही जैसे कि वो युवक साधु के साथ ये पूछने गया था साधु के पास में कि मुझे संसार से कैसे पार हो सकता हूं, इसका उपाय बता सकते हैं, मेरे अंदर बहुत सी इच्छाएं उठती हैं, मैं उनको पूरा करके कैसे सुख शांति पा सकता हूं इस संसार में, बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा मैं पानी भरने जा रहा हूं कुएं पर, चल मेरे साथ। तो बाल्टी लेकर के और घड़ा लेकर के बाबा जी गए थे, और युवक भी साथ में गया था, और बाबा जी ने बाल्टी से पानी खींचकर घड़े में भरना शुरू किया, और घड़े में जैसे ही पहली बाल्टी डाला तो वो तो नीचे से निकल गया। युवक को हंसी आ गई कि बाबा जी कर क्या रहे हैं, कब लौटोगे वापस? तो उन्होंने कहा जब घड़ा भर जाएगा तब लौटेंगे। उन्होंने कहा कभी नहीं भरने वाला, क्यों? उसकी पैंदी नहीं थी तो उसमें पानी कितने ही भरेंगे, वो भरने वाला नहीं है। और ऐसे ही इच्छाओं की कोई पैंदी नहीं होती, वे कभी नहीं पूरी होती, एक पूरी होने से पहले दूसरी उत्पन्न हो जाती, यही उसकी तासीर है, ये उसका स्वभाव है। लेकिन हम सुबह से शाम तक अपने इच्छाओं की पूर्ति में ही पूरा जीवन निकाल लाते हैं। मन वचन और शरीर, इन तीनों को हम इसी में लगाए रखते हैं कि मैं अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा करूं, और एक के बाद एक इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाती हैं, और बल्कि उत्पन्न होती हजार इच्छाएं। साइकोलॉजी में लिखा हुआ है कि हजार इच्छाएं एक बार में आदमी के अंदर उत्पन्न होती, जिसमें से एक इच्छा पूरी होती, 999 अनकॉन्शियस में डिपॉजिट हो जाती, वे फिर किसी न किसी रूप में बाहर प्रकट होती है, पता ही नहीं लगता है कि मेरे अंदर ऐसी कितनी इच्छाएं पड़ी हुई। हम अपनी इच्छाओं को तो पूरा नहीं कर सकते, इच्छाओं से ऊपर जरूर उठ सकते हैं, और इच्छाओं से ऊपर उठ जाना इसी का नाम तपस्या है, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मन का तप, वाणी का तप और शरीर का तप, ये तीनों तप हम चाहें तो अंगीकार कर सकते हैं, और ज्यादा कठिन नहीं है। इस तप के द्वारा हम जो भीतर संचित हमारे बुराइयां हैं, जो भीतर संचित मलिनताएं हैं, उनको आसानी से हटा सकते हैं, नई वाली गंदगी आना बंद कर दें और पुरानी वाली नष्ट होती चली जाए। बहुत आसान सा उपाय है। मन का तप यानी क्या? मन में सदा प्रसन्नता बने रहना, मन नहीं बिगड़ना, मन कड़वा नहीं होने देना, मन खट्टा नहीं होने देना, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तप है, ये मन का तप है। मन में किसी के प्रति दुर्भावना ना आने पाए, मन अपनी मनमानी ना कर पाए, यही तप है। मन मेरे और दूसरे के अहित की सलाह ना दे, यही मन का तप है। अपने इंद्रियों की वलगाएं ऐसे मन के हाथ में दे दी जाएं जो कि अपने और दूसरे के कल्याण का ही विचार रखता है, शुभ विचार रखता है, वही मन जो है वास्तव में तप करने वाला मन है। और जो अपनी भोगाकांक्षाएं की पूर्ति करने में लगा हुआ है वो मन, वो तो बहुत कच्चा मन है। मन को मार लेने का मतलब ये नहीं है कि हम ये सोचें कि मन को मारने का मतलब ये है कि कहीं कोई उसका घात कर देना है। मन को मारना मतलब मन पर नियंत्रण कर लेना है। अपन कहते हैं कि मन तो बहुत चंचल है, तो मन चंचल ना होगा तो कौन होगा चंचल? घोड़ा चपल और चंचल ना हो तो क्या कौन होगा? घोड़ा अरियल और मरियल नहीं होना चाहिए? हाँ, ये घोड़े की विशेषता है कि वो अड़ियल भी ना हो, मरियल भी घोड़ा ना हो, नहीं तो हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे ही मन भी अड़ियल और मरियल नहीं होना चाहिए। मन तो बहुत सतेज, सचेत और सावधान होना चाहिए। बस इतना जरूर है कि उसकी उसकी लगाम भर हमारे हाथ में होनी चाहिए। तो मन तो घोड़े की तरह ही बहुत तेज और बहुत सजग होना चाहिए, लेकिन उसकी लगाम, उसे किस दिशा में ले जाना है, उसे शुभ में ले जाना है, उसे अशुभ की तरफ नहीं जाने देना है, ये भर मुझे हमेशा सावधान रहकर के देखना है। तो वो मन मेरे जीवन की मलिनताओं को धोने में कारण बन जाएगा। उसी मन से मैं अपने जीवन को मलिन करता हूं और वही मन मेरी मलिनताओं को हटाने में कारण बन जाएगा। मन का तप यही है, जिसमें कि मैं दूसरे के कल्याण का विचार करता हूं, अपने स्वयं के कल्याण का विचार करता हूं, जिसमें दूसरे का ध्यान रखता हूं, दूसरे का अहित ना हो जावे इस बात का ध्यान रखता हूं। एक छोटी सी घटना सुनाऊं आपको, आश्चर्य होगा, मुझे पढ़ा था मैंने तो मुझे आश्चर्य हुआ। एक 8 बरस 10 बरस का बच्चा एक होटल में अपने लिए आइसक्रीम खाने के लिए एक कौन आता आइसक्रीम का भरा हुआ वो लेने के लिए गया। तो बैरा ने आकर के उससे, क्योंकि बड़ा होटल था, उसमें बैरा ने आकर के पूछा कि कौन सी वाली आइसक्रीम। तो वो ज्यादा तो नहीं समझता था कि कौन सी वाली आइसक्रीम। उसने कहा कितने कितने रुपए वाला कौन है। तो अब जब कोई ग्राहक ऐसा पूछता है तो उसको लगता कि आए काए को यहां पर, यहां तो पैसा फेंक वाला मामला है। 4 रुपए वाली चीज भी 40 में मिले तो लेना पड़ेगी, क्योंकि आप बड़े कैफे में आए। स्टेटस यही तो है हमारा मन, काहे के लिए, काहे के लिए यहां से वहां भागता है। पेट भरने के लिए तो वही चीज कहीं से ही प्राप्त की जा सकती, लेकिन मन भरने के लिए तो, मन भरने के लिए तो बड़ी जगह पे बैठ के खाऊंगा तो बड़ा आदमी कहलाऊंगा, तब मन भरेगा। जरा बाहर निकलूंगा जबकि 40 रुपए मिटा के निकले हैं 4 रुपए वाली चीज के लिए, पर निकलेंगे ऐसे जैसे कि वाह वाह, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया। नहीं, ये मन की चाल है, ये सब और कुछ नहीं है। ऐसा वाला मन तो हमेशा हमें मलिनताओं की तरफ ही ले जाएगा, ऐसा मन कभी तपस्या नहीं कर सकता। अब देखना, वो पूछ रहा है कि कौन की कीमत कितनी है, कम से कम कितनी कीमत वाला कौन है आपके पास। तो बोलता कि 2 रुपए वाला भी है, 2 रुपए वाला, इससे कम वाला नहीं है। तो जरा गुस्सा आ जाती है उसको, पर छोटा सा बच्चा है, ये सोच करके वो कहता कि सुनो, इससे छोटा वाला 1.5 रुपए का भी है। तो वो छोटा वाला बच्चा क्या कहता कि 1.5 रुपए वाला कौन ही दे दो आइसक्रीम का, और वो 1.5 रुपए वाला कौन खरीद करके उसके आइसक्रीम खा करके जब वापस लौटता है और बैरा उसके पेट में जाकर के देखता है तो 2 रुपए पड़े हुए हैं। 8 आने उसने उस बैरा के लिए भी छोड़े थे। चाहता तो 2 रुपए वाला कौन भी खरीद के खा सकता है, लेकिन 1.5 रुपए का इसलिए खाया कि 8 आने पैसे टिप उसको भी मिलेगी। ये कौन सा वाला मन है? ये अनाशक्त मन है। इतना आशक्त नहीं है कि दूसरे का भी ख्याल ना रखो। इतना ही कर लें तो बहुत बड़ी तपस्या हो गई। अभी तो घर गृहस्थी में दूसरे का कुछ भी हो जाए, मेरी सुख सुविधाएं पूरी होनी चाहिए, मुझे इससे मतलब है। छोटे से बच्चे से पूछ लो, दीदी के लिए मिलो चाहे मत मिलो, मेरे लिए चाहिए। बड़े भैया के लिए मिलो चाहे मत मिलो, मेरे लिए चाहिए, आप मेरे लिए ला करके देंगे। यही ना चल रहा है? ये तो अपने लोग माने जाते हैं, घर गृहस्थी में तो सब अपने ही है, पराए तो वहां कोई नहीं है। लेकिन जो जितने अपने हमारे लोग हैं उनके बीच में भी एक दूसरे की सुख सुविधाएं छीन करके अपनी सुख सुविधा जुटाने की
कोशिश है, ये वाला मन तपस्या नहीं कर सकता।
मन की तपस्या तो वो है जिसमें कि मैं दूसरे का भी ध्यान रखता हूं कि मेरे साथ साथ दूसरे का भी कल्याण होना चाहिए। मुझे तो सुख मिल रहा है, मैंने दूसरे का ध्यान रखा है कि नहीं, जो दूसरे की जीत में अपनी जीत महसूस करता है। यहां तो दूसरे की जीत में अपनी हार महसूस करते हैं, भले ही उस पंक्ति में खड़े हों चाहे नहीं खड़े हों। यहां तो दूसरे के सम्मान में हमें अपना अपमान होता मालूम पड़ता है, ऐसे मरियल मन से तपस्या नहीं हो सकती। हां, तपस्या करने वाला मन इतना साहसी होता है कि दूसरे के सुख में अपना सुख मान सके, दूसरे की जीत में अपनी जीत मान सके, दूसरे के कल्याण में अपना कल्याण मान सके। इस तरह हम चाहें तो दिन भर में एक काम मन के द्वारा ऐसा भी कर सकते हैं जिसमें कि अपना और दूसरे का कल्याण का विचार हो। ये मन का तप हो गया, वाणी का तप। मैं प्रेम से बोलूंगा, हितकारी बोलूंगा, सत्यमवद प्रियमवद, ये मैंने अपने वाणी के लिए और तय करके रखा है। या तो बोलूंगा ही नहीं, क्या जरूरत आ पड़ी बोलने की। अगर बोलूंगा तो सत्य बोलूंगा, लेकिन सत्य भी ऐसा नहीं बोलूंगा जो दूसरे को तकलीफ पहुंचाने वाला हो। मैं परोपकारी सच ही बोलूंगा, हां अपकारी सच भी नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसा ऐसा झूठ भी नहीं बोलूंगा जो कि प्रिय हो। हां असत्यम प्रियम अपि न वद, मैं तो प्रिय बोल रहा हूं भले ही असत्य बोल रहा हूं, नहीं मैं तो सत्य बोल रहा हूं भले ही कड़वा है, नहीं दोनों नहीं चलेंगे। सत्यम वद प्रियम वद, सत्य ही बोलूंगा प्रिय ही बोलूंगा। कई बार मुझे लगता है कि ये वही टंग है, ये वही जिब्बा है जिसके द्वारा सुबेरे से मैं कितनी बढ़िया बढ़िया पूजा गा के करता हूं, और ये वही जिब्बा है जिससे मैं दूसरे से कटु वचन बोलता हूं। अरे ये तो गड़बड़ है, ये तो मैं पहले दिन भर इसको गंदी बनाता रहता हूं, फिर बाद में थोड़ी देर के लिए भगवान के वाणी का उच्चारण करता हूं तो कितनी हो पाती होगी, साफ हो ही नहीं पाती होगी, दिन भर तो गंदी बनी रहती। अगर ऐसा थोड़ा सा विचार कर ले मैं कि इस जिब्बा को मुझे गंदा नहीं होने देना, नहीं तो फिर इसके द्वारा अपवित्र के द्वारा मैं भगवान का पवित्र नाम कैसे लूंगा। अगर ये हमारे ध्यान में आ जावे तो इस जिब्बा का तप हो गया और कुछ नहीं है। जिब्बा से उन वचनों का प्रयोग करूंगा जो मेरी जिब्बा को मलिन न करें, जो मेरे मन को मलिन न करें, जो मेरी आंख नीची ना करें, वो वचन बोलूंगा। देख लो आप, झूठ वचन बोलने के बाद आंख नीची हो ही जाती है, आंख नहीं मिला सकते फिर। कड़े वचन बोलने के बाद भले उस समय आप अपना टेरर क्रिएट कर लो थोड़ी देर के लिए, लेकिन आंख तो भीतर भीतर झुक जाती है कि ठीक नहीं किया। गिल्ट तो फील होता ही है, कोई कितने भी क्यों ना हो। तब फिर क्यों ना हम सावधानी पूर्वक अपने वचन का उपयोग करें तो वह वचन का तप भी हमारे जीवन की मलिनताओं को धोने में कारण बन जाएगा। शरीर का तप, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि शरीर से पूज्य पुरुषों की विनय करना और हमेशा शरीर से जप तप इत्यादि करते रहना, परोपकार करते रहना शरीर के द्वारा। तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधवाई। इस शरीर के द्वारा दूसरे का उपकार करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे का पर निंदा सम अग्न समाई। इस शरीर के द्वारा दूसरे का हम अपकार करते हैं, उससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता। और रोज करते हैं, अपनी शरीर की चेष्टाएं कितने जीवों का घात करती हैं। सुबह से शाम तक कभी विचार किया, ध्यान ही नहीं रहता। चलो कोई बात नहीं, पर दिन भर में ये तो ध्यान रहे कि मैंने शरीर से आज दिन भर में उपकार करा किसी का कि नहीं करा। चलो अपकार तो मेरे को ध्यान नहीं रहता, हो जाता मेरे से, क्योंकि संस्कार है, कभी डाले नहीं संस्कार। अच्छा करने के संस्कार बचपन से डाले हों तो शरीर से कुछ अच्छा भलाई हो। बापू का की सेवा में रहती थी मानू बहन, तो उनके बेटी बत उनकी सेवा करती थी। मिट्टी की पट्टी कब लगानी है बापू को, और कब उनके लिए ठंडी पट्टी रखनी है, सबका ध्यान रहता था उनको। एक दिन जब वो मिट्टी की पट्टी लगा रही थी बापू को, सो बापू ने की दृष्टि चली गई, आश्रम में कुछ मजदूर काम कर रहे थे और वो अपनी रोटी खा रहे थे, सूख गई थी रोटी, अचार लगा लगा के खा रहे थे, कुछ गलाने के लिए था नहीं, सब्जी नहीं थी, दाल नहीं थी। तो बापू ने मनु बहन से कहा कि मनु देख तो बेटे आश्रम में कितना छांच रहता है,
इनको छांस दे दिया करें, उसमें रोटी गला करके खा लेंगे, अपना छांस तो वैसे ही पड़ा रहता है।
हाँ बापू दे दूंगी। अब तीन चार दिन के बाद देखा तो वो फिर वैसे ही का वैसे ही खा रहे थे। तो बापू ने कहा कि क्यों मनु बेटे, तुमने इनको छांस नहीं दिया। अरे बापू मैं तो भूल ही गई। अच्छा तुम्हारी गलती नहीं है। बापू क्या बोलते हैं, ये नहीं कहते कि तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी ही है, हम बड़े लोगों की है, हमने बचपन से तुम्हें दूसरे की मदद करना सिखाई नहीं, इसलिए तो तुम मदद करना भूल गई। मेरी पट्टी कितने बजे रखनी, कितनी देर बाद निकालनी, ये तेरे को सब ध्यान रहता है। इसमें लगाने वाला अल्पीन कहां रखा हुआ है, ये तेरे को ध्यान है, लेकिन उनको मुझे छांस देनी है ये ध्यान नहीं रहा। क्यों? क्योंकि परोपकार शरीर से करने की कोई आदत ही नहीं रही। दरवाजे पर अगर कोई गरीब भिखारी आ जावे तो ये कहलवाने की आदत रहती कि जाओ बेटे क्याओ आगे जाओ, ये कहने की आदत तो डाली जाती। अगर कोई गाय घर के सामने आ जाए तो दुत्कार के भगाने की आदत तो डाली जाती है शरीर से, कभी ये नहीं डाली जाती कि गाय आई है तो जाओ ले जाओ एक रोटी उसको खिला के आना। अगर कोई गरीब आदमी दरवाजे पर आ गया है, बुलाया तो नहीं था कोई इन्विटेशन देकर के, लेकिन आ गया है दरवाजे पर तो अतिथि देवो भव, ये तो सिखाई नहीं है। उसके लिए दे के आओ चाहे जो करता हो, हमें इससे क्या मतलब, कौन हिसाब किताब लगाए, सात पीढ़ियां पूछे अपनी बेटी की, कौन सी सात पीढ़ी पूछते कि शराब पीते हो और हमारे घर में सब खाते पीते हो। अब क्या कहें, उससे क्या कहेंगे कि तुम शराब पीते इसलिए तुम्हें हम दान नहीं देते। वो घरे के लड़का तो पी रहे, वो घरे के तो उपद्रव कर रहे, सारी संपत्ति के मालिक हैं वे। अब किसको क्या कहेंगे ये बताइए आप, किसको पात्र माने किसको अपात्र माने। अपात्र में तो सारी संपत्ति जा रही है, बताइए नहीं जा रही है। कैसी कैसी स्थितियां आज देखने में और सुनने में आती हैं, शर्म से माथा झुकने लगता है कि हमारे अपने परिवारों में जिनको कि हम बहुत बहुत श्रेष्ठ मानते हैं उनमें भी ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनसे कि दिल में और बहुत क्षोभ क्या दुख उत्पन्न होता है कि ये हमने सिखाया ही आश्रम इसलिए तुम्हें हम दान नहीं देते। वो घरे के लड़का तो पी रहे, वो घरे के तो उपद्रव कर रहे, सारी संपत्ति के मालिक हैं वे। अब किसको क्या कहेंगे ये बताइए आप, किसको पात्र माने किसको अपात्र माने। अपात्र में तो सारी संपत्ति जा रही है, बताइए नहीं जा रही है। कैसी कैसी स्थितियां आज देखने में और सुनने में आती हैं, शर्म से माथा झुकने लगता है कि हमारे अपने परिवारों में जिनको कि हम बहुत बहुत श्रेष्ठ मानते हैं उनमें भी ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनसे कि दिल में और बहुत क्षोभ क्या दुख उत्पन्न होता है कि ये हमने सिखाया। शरीर से तपस्या करना सीखना चाहिए थे, शरीर को हमने भोग विलास में लगा दिया। शरीर से अपना कल्याण करना चाहिए था, अब शरीर से अपना कल्याण और पूरे सबका अकल्याण करना सिखा दिया हमने। क्या सिखाया हमने, कौन से संस्कार हमने दिए, क्योंकि हम स्वयं ही शरीर से तपस्या नहीं करते। एक दिन जो है एक आसन करने की आदत नहीं है, उपवास करने की आदत नहीं है, शरीर से तो भोग विलास ही करने की आदत है। लेकिन मजा ये है कि आजकल उपवास और एक आसन करने वाला भी वही सब कर रहा है, ये भी देखो आप मजा, एक तरफ एक आसन और वो भी है, दूसरी तरफ भोग विलास भी है, दोनों ही चीजें। तब क्या कहें हम, हम बारह तपों का वर्णन भी करें तो क्या होगा, बहुत बाहरी क्रियाएं करने लगे हम शरीर से। नहीं मैं उसकी बात नहीं करूं, शरीर में से तपस्या करने के मायने ये है कि भगवान का सुमरण करना, भगवान के प्रति विनय, शरीर से हाथ इत्यादि जोड़ करके बड़े लोगों के, और बड़े लोगों का सम्मान करने का मतलब है कि बड़े लोगों की बात का सम्मान कर। इस शरीर के द्वारा मैं जितना बन सकेगा अपने से महान लोगों की बात पर ध्यान दूंगा, उनकी बात के अनुसार ही अपने शरीर की चेष्टाएं करूंगा, क्रियाएं करूंगा, ये होना चाहिए। ये शरीर का तप है, दूसरे का परोपकार करने का, अपना भी उपकार करने का। मुझे तो अपने बचपन में याद है, मैंने शायद आपको सुनाया था कि नहीं सुनाया था, घर गृहस्थी में भी लोग जो है और चाहें तो ऐसी तपस्या कर सकते हैं, मन वाणी और शरीर की कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। हमने शायद ध्यान नहीं आ रहा, सुनाया होगा तो फिर से सुनाई देता हूँ, पर प्रशंसा के लिए नहीं सुना रहा हूँ अपनी, सिर्फ कह रहा हूँ कि आप भी घर में और ऐसी कोई प्रक्रिया आसानी से बना सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। अगर ऐसा एक दूसरे का ध्यान रखने लगें तो बहुत सारे आसानी से तप हम घर में रह करके भी कर सकते हैं। घर में मटर फल्ली आती थी, कितनी, एक पाव, महंगी रहती शुरू शुरू में जब आती हैं तो एकदम ऐसी नहीं खरीद जा सकती एक किलो भी, तो जब सस्ती हो जाए जब एक किलो ले आएंगे, लेकिन जब तक वो उनका टेस्ट ही खत्म हो जाता, शुरू में ही अच्छी लगती वो नरम वाली, तो 250 ग्राम लेकर के आए, अब 250 ग्राम लेकर के आए, चार लोग खाने वाले हैं और छिलका निकल गए 50 ग्राम, बची 200 ग्राम, अब 200 ग्राम बनाई,
अब 200 ग्राम बनाई तो हर एक कैंडिडेट को यह ध्यान रखना चाहिए कि मेरे जिम में 50 ग्राम आएंगे। और मां भर एक ऐसा जीव है घर में जो इसकी चिंता नहीं करता, बाकी सबको चिंता करनी चाहिए, वो चिंता नहीं करती मां। मां तो और दे दें क्या, और परोसें, अब अच्छी लग रही तो देते जाओ। नहीं, लेकिन अब हमारा फर्ज है कि मेरे हिस्से की मैंने ले ली, अब मां को हाथ बंद करते कि नहीं अब नहीं चाहिए, क्यों ले लो थोड़ी सी, ना अभी रखी हुई है, उसको बचा के रखते थे कि नहीं तो वो थोड़ी खत्म दिखेगी मां को तो फौरन परोस के चली जाएगी, नहीं उसको थोड़ी सी खा के बचा लेते थे कि रखी रहेगी तो मां भी नहीं परोसेगी, क्योंकि मेरे हिस्से की परोस चुकी, अब उसके हिस्से में। ये ध्यान रखते हैं क्या शरीर से, न शरीर से, न वाणी से, न मन से, तीनों का तप हो सकता वहीं पर अगर दूसरे की सुख सुविधा का भी जरा सा भी ध्यान रख लिया जाए। सैक्रिफाइस, अपनी सुख सुविधाएं छोड़ देना दूसरे के लिए, यहां से शुरुआत होती है तप की, और बहुत बड़ी चीज नहीं है। कोई अग्नि में बैठ करके जलने का नाम तप नहीं है। अपनी इच्छाओं को रोक लेना, सुख दुख के बीच में समता भाव धारण कर लेना, यह तप है। विपत्ति आने पर दुखी नहीं होना, उसको झेल लेना, और सुख के अवसर आने पर ज्यादा एक्साइट होकर के फूल के कुप्पा नहीं होना, यह है तप। भाई ऐसे तप के द्वारा बहुत आसानी से हम चाहें तो जितने कर्म हमने खोटे बांध लिए हैं उन कर्मों से मुक्त हो सकती है। तो हिसाब किताब चुकता करने का मामला है, हिसाब तो सबको चुकता करने पड़ेगा। जिसने जितना उधार लिया है कर्मों का, वो सब सबको अपना अपना इंडिविजुअल चुकाना पड़ेगा। हम जो कर्म करते हैं वो तो उधार ही लेते हैं मानिएगा, और जब तक हम उसे शांत भाव से नहीं चुका देंगे, चुकाने में हम रोएंगे धोएंगे या अहंकार करेंगे तो नहीं चुकता होने वाला। जितनी समता रखेंगे उतने आसानी से हिसाब चुकता हो जाएगा। एक उदाहरण देकर के बात पूरी करता हूँ तो शायद समझ में आएगा कि संसार में जो कर्म हमने किए हैं उनसे सुख दुख तो सबके जीवन में आते हैं, भला बुरा सबके जीवन में देखने में आता है, संयोग वियोग की पीड़ाएं सबके जीवन में आती हैं। उनके बीच में हम कितना अपना मन वाणी और शरीर को संभाल सकते हैं, कितनी समता भाव रख सकते हैं, ये भर हमें अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने से आसानी से ये सब चीज़ें आ सकती हैं। एक बाबा जी जो है तपस्या कर रहे थे, अपने आत्मा के ध्यान में लीन थे, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक ग्वाला जंगल में अपनी गायें लेकर के आया। अब दोपहर का समय हो गया, भोजन करने का समय हो गया। अब वो गायों को सब छोड़ करके और भोजन करने जाए, क्योंकि भोजन कोई ने ला करके नहीं दिया आज, वैसे तो रोज ले आता था, लेकिन आज पता नहीं घर में क्या हुआ कि भोजन नहीं आया, अब क्या करे। तो उसने तुरंत ही ऐसा विचार किया कि ये बाबा जी तो भले खड़े ही हुए हैं, तो बाबा जी के पास जाके कहा कि देखो बाबा जी, मैं जा रहा हूँ रोटी खाने घर, और ये सब घूम रही हैं गायें, आप देखते रहना। हाँ, इससे ज़्यादा सीधा आदमी कौन मिलेगा, फुर्सत आदमी। अपन भी तो यही करते कि बाबा जी हैं, फुर्सत हैं, उन्हीं से सब काम करवा लूँ, जो मंदिर बनने सो आप बता दो, खड़े होके बनवा दो, जो कैसो कैसो बनने, हमें तो फुर्सत है नहीं है। जो फलानी चीज़ है सुबह महाराज आप करवा दो, सब महाराज से करवा लो, पैसा इकट्ठे करवाऊंगे सो चलो महाराज मंच पे बैठ जाओ, सो बोली लग जाए, सो आपके सामने तनक ज्यादा लग जाए, महाराज ना हुए हुंडी हो गई बनाने की। नहीं मतलब हमें नहीं समझ में आता ये चीज़, अभी तक नहीं आई समझ में हमारे, इसलिए हमारे मुँह से ऐसा निकल जाता। तो उसने भी, ग्वाले ने भी, अपन को लग रहा होगा कि ग्वाला तो अज्ञानी है, लेकिन अपन भी उतना ही वैसे ही है, ज्यादा फर्क नहीं है उसमें। अपन भी यही करते हैं महाराज के माध्यम से, महाराज को फुर्सत है। तो उसने भी सोचा और बाबा जी से, अब बाबा जी ने तो कुछ नहीं कहा, नो रिप्लाई, उनने तो कुछ भी नहीं, आप जवाब आप कुछ नहीं दिया। उसने हाथ जोड़ के कहा कि बाबा जी आप देखते रहे ना, गायें सब यहीं पर चल रही हैं आपके आसपास ही, मैं अभी लौट के आता हूँ। अब वो चला गया, जब लौट के क्या है तो गायें हैं, उनको जहाँ घास मिलेगी, बाबा जी का मतलब उनको, बाबा जी थोड़ी उनको घास डाल रहे हैं, तो गायें जो है घास खाने के चक्कर में और कहीं अंदर जंगल में निकल गई। अब जब आके देखा तो यहाँ गायें नहीं, अब इधर उधर दौड़ धूप की, सब तरफ भागा, देखा गायें मिल ही नहीं रही। अब बाबा जी कुछ बोलते नहीं है, सब ढूंढने के बाद अब शाम हो गई। अब शाम हो गई तो गायों को जहां वो छोड़ के गया था, गायों का स्वभाव होता है कि वहां तक तो लौट के आएंगी। तो अब ये चुपचाप यहाँ वहाँ देख रहा है, परेशान है। उतने में देखता क्या है, जब दूर से कहीं ढूंढ ढाड़ के लौटता है तो देखता कि बाबा जी के चारों तरफ गायें आके बैठ गई, शाम हो गई थी। अब उसको गुस्सा आ गया, अच्छा लगते तो सीधे साधे हो बाबा जी, पर हो तो बहुत होशियार। मैं ढूंढ ढाड़ के परेशान होकर लौट जाऊंगा, तुमने ये सोच लिया था कि अब मैं लौट जाऊंगा, इसलिए सब जितनी जहां छुपा के रखी थी सब बुला ली फिर, और अब ले जाने के चक्कर में थे गायों को। उसने तो अपने दिमाग से यही लगा लिया। और मैं इतनी देर से इतनी बातें कह रहा हूं तो उनका कोई जवाब भी नहीं देते हो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता? क्या तुम्हारे बोलने के लिए मुख नहीं है? मुझे बता नहीं सकते थे कि गायें यहां यहां रखी हुई है तुमने? अब इन सबको तुम ले जाना चाह रहे? अभी बताता हूं तुम्हें, तुम्हें कान से भी नहीं सुनाई पड़ता है। अब बाबा जी फिर भी चुप हैं। वो मालूम क्या करता है, ग्वाला दो कीले लेके आता है और एक हथौड़ा लेके आता है। समझ रहे हैं क्या करेगा वो? दोनों कानों में और उसने कीले ठोकना शुरू कर दिए। बाबा जी चुपचाप खड़े हुए, शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप तीनों कर रहे हैं, और शांत हैं वो, समतापूर्वक हर स्थिति को सहन कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति महाराज के ऊपर आ जावे और जो सज्जन पुरुष हैं वे उनकी मदद ना करें, ऐसा हो सकता है? तो देव इत्यादि जो सज्जन थे वो आ गए। उन्होंने कहा, बाबा जी आप अगर कहें तो इसको हम दंडित कर दें, आप हमारी मदद ले लें, हम आपकी मदद के लिए हैं। तब बाबा जी ने क्या कहा, मेरा इससे कुछ हिसाब किताब पड़ा होगा पुराना, चुकता हो रहा है, अब अगर चुकता नहीं करूंगा तो बाद में चुकाना पड़ेगा, इसलिए चुकाई लेने तो मैं तो शांत खड़ा हूं, मैंने इसका ऐसा ही कोई उपद्रव किया होगा, उसके फलस्वरूप आज मुझने मेरे से इसने अपना हिसाब चुका लिया। कोई अगर गाली दे तो उस समय ये मन में आ जाना चाहिए कि पुराना हिसाब चुकता कर रहा है, अब नया और काहे को हिसाब खोलो, चार बातें और कड़ी कहकर के इससे नया खाता काहे को खोलो, पुरानी तो चुक नहीं पा रहा। ऐसा अगर मन में आ जावे, जब जब भी मेरे मन को बुराइयां घेरें, मेरी वाणी मलिन होने लगे, मेरे शरीर से दूसरे का अपकार होने लगे, तब विचार आ जावे कि दूसरे ने मेरा कुछ बिगाड़ नहीं किया, मैंने ही कुछ किया होगा, उसकी वजह से ये सब स्थितियां निर्मित हुई हैं, अब मैं शांत रह करके और अपना हिसाब चुकता कर दूं तो ही इस संसार से मुक्त हो पाऊंगा। भाई ये जो कर्मों का लेना देना है वो हमें एक न एक दिन चुकता करना पड़ेगा। नए कर्म कह करने से पहले हम ये ध्यान रखें कि पुराने कर्मों का हिसाब भी हमें ही चुकता करना पड़ेगा, और नए कर्मों का भी, जो अच्छे बुरे कर्म करेंगे उन सब का हिसाब हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि विश्व कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल जाखा। यह सारा संसार कर्म प्रधान है, यहां जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही उसका फल भोगने के लिए बाध्यता है, भगवान भी फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे किए हुए कर्म हमें भोगना पड़ेंगे। आग में हाथ डालने पर वो माफ नहीं कर सकती कि चलो आपको मालूम नहीं था, आप छोटे हो, अज्ञानी हो, इसलिए जाओ आपको नहीं जलाते, अब अगले बार से सावधान रहना, मत डालना हाथ। नहीं, आप डालोगे, चाहे छोटे हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, कैसे भी हो, वो तो आपको जलाएगी। हम जो भी कर्म करेंगे उसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा, तो क्यों ना हम सावधानी से कर्म करें, जिससे कि नए कर्मों का बोझ ना बढ़े बल्कि पुराना बोझ और हल्का होता जाए, ऐसे कर्म करें, इसी से हमारा जीवन अच्छा बनेगा। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते हम तारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां। दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणिया। हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पत पंथी गुरुवर प्रणाम। मिथ्या तम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर भास वेखो भानु शिव कानी है शो जग। अनुभवताय वेखो जीवों के जताय वेखो काबू न सताय वेखो भव्य और आनी है। सुख विस्तार वेखो ये ही जिन वाणी जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। चरु सुदीप सुधूप फलार्घ नवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनि राज मगम।
नमः। हम सभी के मन में कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन की वीणा पर सांसों के तार कुछ इस तरह संभालें कि आत्मीय संगीत बज उठे, रोम रोम प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव से भीग जाए। हम सभी को तलाश होती है एक ऐसे भीतरी संगीत की जो केवल मन को ही नहीं चेतना को भी तृप्ति दे, शांति और आनंद दे, जीवन की तमाम विषमताओं के बीच हम समत्व के स्वरों को साध सकें, जीवन में निरंतर चलते अपने पराये के भेदभाव से दूर हटकर कुछ क्षण प्राणी मात्र कृपति हम आत्मीयता से भर सकें, जीवन की आपाधापी और कोलाहल के बीच आध्यात्मिक चेतना के मधुर स्वर हमारे जीवन में गूंज उठें, हमारी इस कल्पना को साकार किया है भूंदरदास जी, दौलत राम जी, भागचंद जी आदि प्राचीन आध्यात्मिक कवियों ने, और वर्तमान में स्वर दिए हैं डॉक्टर रवि भटनागर, श्री अजय सारस्वत एवं प्रेरणा केशव जी ने। सभी को हमारा शुभाशीष। संसार की इस अंतहीन यात्रा में हम इतने अकेले हैं कि अपना सुख दुख भी हम आपस में बांट नहीं सकते। संसार के मेले में मिलना और मिलकर बिछुड़ जाना मानो हमारी नियति है। यहाँ जिसे हम अपना मानते हैं वह भी आयु पूर्ण होने पर हमें साथ नहीं दे पाता और शेष रह जाती है एक अनाम पीड़ा।
सदैव अकेला जीव तू भ्रमत सदैव अकेला संग साथी कोई न तेरा संग साथी कोई न तेरा अपना सुख दुख आप ही भुगते होत कुटुंब न भेला जीव तू भ्रमत सदैव अकेला जीव तू भ्रमत सदैव अकेला स्वार्थ भय सब बिछर जात हैं बिघट जात जो मेला स्वार्थ भय सब बिछर जात हैं बिघट जात जो मेला रक्षक को शक कोई न पूरन है जब आयु अंत की बेला जीव तू भ्रमत सदैव अकेला जीव तू भ्रमत सदैव अकेला पार बंधत नहीं जैसे दुर्धर जल को ठेला फूटत पार बंधत नहीं जैसे दुर्धर जल को ठेला तन धन जीवन विनश जात जो तन धन विनश जात जो इंद्रजाल का खेला जीव तू भ्रमत सदैव अकेला जीव तू भ्रमत सदैव अकेला संग साथी कोई न तेरा संग साथी कोई न तेरा भाग चंद में लख कर भाई हो सतगुरु का चेला जीव तू भ्रमत सदैव अकेला जीव तू भ्रमत सदैव अकेला जीव तू भ्रमत सदैव
यह संसार एक स्वप्न की तरह है जो आंख खुलते ही खो जाता है शरीर और धन वैभव पानी के बुलबुले की तरह क्षण भर में विलीन हो जाते हैं अग्नि में डाले गए तिनकों की तरह प्रतिपल प्रतिक्षण यौवन नष्ट होता जाता है फिर भी संसार शरीर और भोगों की आसक्ति हमें निरंतर भुलावे में डाले रहती है और हम भगवान का भजन भी भूल जाते हैं
भगवंत भजन क्यों भूला रे भगवंत भजन क्यों भूला रे क्यों भूला रे क्यों भूला रे भगवंत भजन क्यों भूला रे रैन का सपना यह संसार रैन का सपना तन धनवार बबूला रे क्यों बोला रे भगवंत भजन क्यों
जीवन में प्रतिक्षण उतार चढ़ाव आते हैं। कभी मन भलाई में लग जाता है, कभी बुरे कामों में। साम्य भाव का स्वाद हम जीवन में कभी ले ही नहीं पाते। यदि हमारा लक्ष्य शुद्ध हो, संकल्प शुभ हो और प्रयत्न अशुभ से बचने का हो, तो संसार से पार होना मुश्किल नहीं है।
परिणति सब जीवन की तीन बातें वरनी, पर
मेहनत सब जीवन की तीन बातें वरनी एक पुण्य एक पाप एक राग हरनी एक पुण्य एक पाप एक राग हरनी परिणति सब जीवन की तीन बातें वरनी परिणति सब जीवन की तीन बातें वरनी तामे शुभ अशुभ अंध दो करे कर्म बंद तामे शुभ अशुभ अंध दो करे कर्म बंद वीतराग परिणति भव समुद्र तरनी वीतराग परिणति भव समुद्र तरनी परिणति सब जीवन की तीन बातें वरनी परिणति सब जीवन की तीन बात वरनी जावत शुद्ध उपयोग पावत नाही मनोग जावत शुद्ध उपयोग पावत नाही मनोग तावत ही कर्म योग कही पुण्य करनी तावत ही कर्म योग कही पुण्य करनी परिणति सब जीवन की तीन बात वरनी परिणति सब जीवन की तीन बात वरनी त्याग शुभ क्रिया कलाप करो मत कदाच पाप त्याग शुभ क्रिया कलाप करो मत कदाच पाप शुभ में नाम गन होय शुद्धता विसरनी शुभ में नाम गन होय शुद्धता विसरनी परिणति सब जीवन की तीन बात वरनी परिणति सब जीवन की तीन बात वरनी ऊंच ऊंच दशाधार चित प्रमाद को विडार ऊंच ऊंच दशाधार चित प्रमाद को विडार ऊंचली दशा ते मत गिरो अधो धरनी ऊंचली दशा ते मत गिरो अधो धरनी परिणति सब जीवन की तीन बात वरनी परिणति सब जीवन की तीन बात वरनी भाग चंद या प्रकार जीव लहे सुख अपार भाग चंद्र या प्रकार जीव लहे सुख अपार या ते निर्धार साधुवाद की उचरनी या ते निर्धार साधुवाद की उचरनी परिणति सब जीवन की तीन बात वरनी परिणति सब जीवन की तीन बात वरनी एक पुण्य एक पाप एक राग हरनी।